इकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश इकत्रा AI की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात करेंगे जापानी मूल के एक बहुत ही अहम ब्रिटिश उपन्यासकार सर काजुओ इशिगुरो की, जिन्हें 2017 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और 2018 में नाइटहुड की उपाधि भी। उनका नाम सुनते ही मेरे ख्याल से लोगों के मन में स्मृति, पहचान और शायद एक किस्म की उदासी, ये सब परतें खुलने लगती हैं। क्या चीज़ है जो उनके लिखने के तरीके को इतना ख़ास बनाती है? शायद ये कि वो हमें इंसानी याददाश्त की उन धुंधली गलियों में ले जाते हैं जहाँ सच और जो हम खुद को यकीन दिलाना चाहते हैं वो अक्सर घुल मिल जाते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो इन गंभीर, अंदर तक कुरेदने वाले विषयों को कभी साइंस फिक्शन, कभी जासूसी कहानी, तो कभी फैंटेसी के ताने बाने में बुन देते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इशिगुरो की इस अनोखी दुनिया को समझने की, उनकी कहानियों के पीछे छिपे मतलबों की था लेने की और ये जानने की कि क्यों उनकी बातें आज भी इतनी मायने रखती हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं।
और इशिगुरो की कहानी शुरू होती है 1954 में, नागासाकी जापान में। अब सोचिए, ये वो समय था जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयानक तबाही से, खासकर उनके जन्मस्थान नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था, उसके सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ तो देश अपने इकोनॉमिक मिराकल, आर्थिक चमत्कार की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोल्ड वॉर के तनाव में जकड़ी हुई थी। तो माहौल एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन का था, पर साथ ही वैचारिक टकराव और एक गहरी अनिश्चितता भी थी।
मतलब इतिहास के घाव भी हैं और भविष्य की उम्मीदें भी, और उनके बीच एक अजीब सा तनाव। और फिर सिर्फ 5 साल की उम्र में उनका परिवार इंग्लैंड आ गया, एक युद्ध झेल चुके जापान से निकलकर युद्ध के बाद वाले ब्रिटेन में आना। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हो गई, दो संस्कृतियां। ये उनके नजरिए को कैसे गढ़ता होगा? मतलब
ये तो उनके लिखने की बुनियाद में है। असल में जब 1980s के दशक में उन्होंने लिखना शुरू किया, तब ब्रिटिश लिटरेचर भी आप कह सकती हैं करवट बदल रहा था। वो पुराना सोशल रियलिज्म जो था, उसकी जगह धीरे धीरे पोस्ट मॉडर्निज्म ले रहा था।
पोस्ट मॉडर्निज्म यानी वो दौर जब लेखक कहानी कहने के पुराने सीधे तरीकों पर सवाल उठा रहे थे।
हाँ बिल्कुल, ये मानने लगे थे कि सच्चाई एक नहीं होती, कई हो सकती हैं, और भाषा और कहानी की बनावट के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इशिगुरो इसी दौर के लेखक थे, सलमान रुश्दी, मार्टिन एमिस, इयान मैकेवन जैसे नामों के साथ। उन्हें कभी कभी क्लास ऑफ 82 भी कहा गया।
हाँ हाँ सुना है। लेकिन इशिगुरो का अंदाज तो अपने समकालीनों से काफी अलग रहा। जहां रुश्दी जैसे लेखक भाषा के जादूगर माने जाते थे या एमएस सीधे सीधे थैचर के ब्रिटेन पर लिख रहे थे, वहीं इशिगुरो ने एक ज्यादा खामोश, ज्यादा मनोवैज्ञानिक राह चुनी। ऐसा क्यों? क्या ये उनके बैकग्राउंड का असर था?
एक दिलचस्प सवाल है। उन्होंने पोस्ट मॉडर्न टेक्नीकें अपनाई जरूर, जैसे वो अनरिलायबल नैरेटर का इस्तेमाल, मतलब ऐसा कहानी सुनाने वाला जिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये विचार कि हर किसी का सच अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव रियलिटी। लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही सदी हुई भाषा और गहरी भावनात्मक समझ के साथ इस्तेमाल किया। उनके नॉवेल्स की पृष्ठभूमि में वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर या ब्रिटेन के सामाजिक बदलावों की आहट तो होती है, पर उनका फोकस हमेशा इस पर रहता है कि इन बड़ी घटनाओं का एक आम इंसान की सोच, उसकी यादों, उसके एहसासों पर क्या असर पड़ता है।
अच्छा,
इसलिए उनका लेखन पहचान, गुजरे हुए साम्राज्य की छायाओं और कल्चरल हेरिटेज जैसे सवालों से तो जूझता है, पर एक बहुत ही निजी, अंदरूनी स्तर पर। उनके उपन्यास अंग्रेजी में हैं, पर किसी एक देश की पहचान में बंधे नहीं लगते। उनमें एक ग्लोबल ह्यूमन एक्सपीरियंस की गूंज है, कह सकते हैं।
उनकी खुद की जिंदगी भी तो इसी कल्चरल उधेड़बुन का आईना है ना? 5 साल की उम्र में 1960 में परिवार नागासाकी से इंग्लैंड के गिल्डफर्ड शहर आ गया। पिता शिजुओ ओशनोग्राफर थे, समुद्र विज्ञानी। उन्हें वहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में रिसर्च के लिए बुलाया गया था। माँ शिजुको और बहन भी साथ थीं।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि जाना शुरू में बस कुछ सालों के लिए था, ऐसा माना गया था। परिवार को लगता था कि वो जापान लौट जाएंगे। इसी वजह से इशिगुरो के बचपन में जापान की एक छवि बनी रही, थोड़ी यादों पर आधारित, थोड़ी कल्पना पर, थोड़ी माता पिता की बातों पर। एक खोया हुआ वतन जो शायद असलियत से ज्यादा मन में जिंदा था। और यही उनके पहले दो नॉवेल्स, ए पेल व्यू ऑफ हिल्स और एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड की प्रेरणा बना।
अच्छा।
घर में जापानी भाषा और तौर तरीके कायम रहे तो बाहर पूरी तरह अंग्रेजी दुनिया थी। ये दोहरापन उनके अंदर हमेशा रहा होगा।
लेकिन बाहर की दुनिया में वो एक आम ब्रिटिश लड़के की तरह ही पले भड़े, स्कूल गए, और ये दिलचस्प है कि शुरुआती दिलचस्पी लिटरेचर में नहीं बल्कि म्यूजिक में थी।
हाँ।
बॉब डिलन, लियोनार्ड कोहेन जैसे गायकों से इतने प्रेरित थे कि वो खुद सिंगर सॉन्गराइटर बनना चाहते थे।
बिल्कुल।
शायद यहीं से कहानी को एक आवाज देने का हुनर उन्होंने सीखा हो, क्यों?
बिल्कुल मुमकिन है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से अंग्रेजी और फिलोसफी पढ़ी।
चेखोव, प्रूस्ट, दोस्तोयेव्स्की जैसे बड़े लेखकों को पढ़ा। लेकिन जिंदगी का अहम मोड़ तब आया जब उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के उस मशहूर क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में दाखिला मिला।
हाँ, वो तो बहुत ही प्रतिष्ठित कोर्स है। मैल्कम ब्रैडबरी, एंजेला कार्टर जैसे बड़े लेखक उनके गुरु थे।
इयान मैक्यावन जैसे लोग साथ पढ़ रहे थे।
वहीं पर उनकी कलम को वो धार मिली, वो अंदाज मिला जिसे आज हम इशिगुरु एस्क कहते हैं।
इशिगुरु एस्क, ये शब्द सुनते ही एक खास तरह के माहौल का एहसास होता है। कैसा माहौल है ये, क्या कहेंगे आप?
इशिगुरु एस्क मतलब सतह पर शांति, ठहराव, लेकिन उस शांति के नीचे दबी हुई उदासी, एक अनकहा पछतावा, यू नो, अस्तित्व की एक गहरी बेचैनी। उनकी भाषा बहुत सदीवी होती है, संयमित, पर वो कम शब्दों में भी भावनाओं का एक पूरा समुंदर समेट लेती है। ये उनके लिखने की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है।
और दूसरी बड़ी पहचान शायद उनके वो कहानी सुनाने वाले पात्र हैं, उनके नरेटर्स।
निश्चित रूप से इशिगुरु का साहित्य में शायद सबसे बड़ा योगदान है उनके फर्स्ट पर्सन नरेटर,
या
मैं कहकर कहानी सुनाने वाले पात्र। ये पात्र अक्सर अपने अतीत को याद कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त भरोसे लायक नहीं होती। वो या तो जानबूझकर कुछ छुपाते हैं या अनजाने में खुद को धोखा दे रहे होते।
जैसे द रिमेन्स ऑफ द डे का बटलर है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाता है, अपनी ड्यूटी, अपने मालिक के प्रति वफादारी की बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे पाठक को समझ आता है कि इस कर्तव्य परायणता के पीछे कितना कुछ दबा हुआ है। कुचली हुई भावनाएं, जिंदगी के गलत फैसले, एक पूरा जीवन जो शायद जिया ही नहीं गया। पाठक को एक जासूस की तरह उन बातों के बीच की खामोशियों को पढ़ना पड़ता है।
सही, बिल्कुल सही कहा। स्टीवन्स हो या फिर एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड का चित्रकार ओनो, ये ऐसे पात्र हैं जो अपनी शर्मिंदगी या नाकामियों को छुपाने के लिए अतीत को एक खास रोशनी में पेश करते हैं। इशिगुरु की कला इसी में है कि वो हमें इन पात्रों के मन की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देते हैं। बिना सीधे सीधे कुछ कहे हमें खुद ही सच्चाई के टुकड़े जोड़ने पड़ते हैं।
और उनका एक और कमाल ये है कि वो गंभीर साहित्यिक विषयों के लिए अक्सर लोकप्रिय जॉनर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेवर लेट मी गो एक साइंस फिक्शन कहानी है, व्हेन वी वर ऑफन्स एक जासूसी नॉवल जैसा लगता है, और द बरीड जायंट में तो फैंटेसी के तत्व हैं। ये क्यों करते हैं वो?
हाँ, ये उनका एक और अहम योगदान है, साहित्यिक फिक्शन और जॉनर फिक्शन के बीच की दीवार को घिराना। वो साइंस फिक्शन या मिस्ट्री का ढांचा तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं, वो इन ढांचों का इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्य सवालों को उठाने के लिए। याददाश्त क्या है? इंसान होने का मतलब क्या है? क्या हम अतीत की मुश्किल सच्चाइयों को भुलाकर जी सकते हैं? वो इन जॉनर की बाहरी खोल को लेकर उसके अंदर अपनी गहरी दार्शनिक चिंताएं भर देते हैं।
अच्छा।
जैसे नेवर लेट मी गो को ही लीजिए। कहानी क्लोन बच्चों की है जिन्हें अंगदान के लिए पाला गया है। ये तो साइंस फिक्शन का प्लॉट है ना?
हाँ।
लेकिन इसके जरिए इशिगुरु प्यार, दोस्ती, नश्वरता और इंसानियत के सबसे बुनियादी सवालों को कुरेदते हैं।
ये वाकई अनोखा तरीका है। तो उनके लेखन के केंद्र में हमेशा स्मृति, पहचान, समय का गुजरना और अक्सर एक तरह का पछतावा, ये सब रहता है, चाहे कहानी किसी भी जॉनर में कही जाए।
हाँ, और स्मृति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी। एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड में चित्रकार ओनो सिर्फ अपनी जिंदगी पर नहीं सोच रहा, बल्कि युद्ध के दौरान एक कलाकार के तौर पर उसकी क्या भूमिका थी इस पर भी सोच रहा है। और द बरीड जायंट में तो पूरा समाज ही एक तरह की सामूहिक विस्मृति एमनीशिया का शिकार है, जहां अतीत की कड़वी यादों को भुला दिया गया है ताकि शांति बनी रहे। इशिगुरु सवाल पूछते हैं, क्या शांति के लिए यादों को दफनाना जरूरी है, या यादों के बिना शांति खोखली है?
और उनके पात्र अक्सर इतिहास की बड़ी घटनाओं के हाशिए पर होते हैं ना, जैसे स्टीवन्स बटलर है, या ए पेल व्यू ऑफ हिल्स की एत्सुको एक आम महिला है। वो हमें दिखाते हैं कि इतिहास का असर सिर्फ बड़े नेताओं या सैनिकों पर नहीं, बल्कि हर आम इंसान की जिंदगी पर कैसे पड़ता है।
सही कहा। और उनके हालिया उपन्यास क्लारा एंड द सन 2021 में तो कहानी एक आर्टिफिशियल फ्रेंड यानी एक रोबोट की नजर से कही गई है। ये भी जॉनर का इस्तेमाल है, लेकिन इसके जरिए वो आज के दौर के अहम सवाल उठाते हैं, प्यार क्या है, क्या मशीनें महसूस कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी के इस युग में इंसान होने का मतलब क्या है।
तो आज के दौर में जब हमारी जिंदगियां डिजिटल मेमोरी, सोशल मीडिया पर घड़ी पहचानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी घिरी हुई हैं, इशिगुरो के उठाए सवाल कि हमारी यादें कितनी भरोसेमंद हैं, सामूहिक विस्मृति के क्या खतरे हैं और प्यार और मानवीय जुड़ाव का क्या महत्व है, ये तो और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
बल्कि विरासत सिर्फ उनके उपन्यासों में नहीं है, बल्कि इन सवालों में है जो वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं। वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, समकालीन साहित्य के सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं, और उनका असर नई पीढ़ी के लेखकों पर साफ दिखता है, जो इसी तरह अविश्वसनीय नरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जॉनर की सीमाओं को तोड़ते हैं और स्मृति व पहचान की जटिलताओं को खंगालते हैं। उन्होंने ब्रिटिश साहित्य की परिभाषा को भी ज्यादा समावेशी बनाने में मदद की है।
उनके लेखन से कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो उनके अंदाज को बखूबी दर्शाती हैं, जैसे द रिमेन्स ऑफ द डे में स्टीवंस का खुद से कहना, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं हंसी मजाक के इस पूरे मामले को ज्यादा उत्साह से देखना शुरू करूं, खासकर अगर यह सच है कि हंसी मजाक में ही मानवीय गर्मजोशी की कुंजी निहित है। ये पंक्तियां उसके दबे हुए एहसासों और बदलाव की वो अधूरी सी कोशिश दिखाती हैं।
हाँ, और नेवर लेट मी गो का वो मार्मिक वाक्य, हम सब पूरे होते हैं, शायद हम में से कोई भी वास्तव में नहीं समझ पाता कि हमने क्या जिया है या महसूस करते हैं कि हमें पर्याप्त समय मिला है, ये नश्वरता और जीवन की अधूरी समझ पर एक बहुत गहरा विचार है।
और स्मृति की अविश्वसनीयता पर एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड से ओनो का कथन, स्मृति मुझे एहसास है एक अविश्वसनीय चीज हो सकती है, अक्सर ये उन परिस्थितियों से बहुत ज्यादा रंगी होती है जिनमें कोई याद करता है।
कितना सच है ये।
बिल्कुल।
और उनकी नोबेल स्पीच का ये अंश कि साहित्य का मकसद क्या है, इसे कितनी खूबसूरती से बयान करता है। लेकिन अंत में कहानियां एक व्यक्ति के दूसरे से कहने के बारे में होती हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। क्या तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है?
साहित्य को सहानुभूति और मानवीय जुड़ाव का पुल बताना।
हाँ,
अभी बहुत छू जाता है, लेकिन मुझे गर्म रखने के लिए मेरी यादें हैं और मैं उनके लिए आभारी हूँ। जिन यादों को मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वे कभी धुंधली होंगी।
एक मशीन के जरिए भी वो यादों के महत्व को रेखांकित करते हैं, अद्भुत।
इशिगुरो के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। हमने संगीत की बात की थी।
हाँ।
कि वो सिंगर सॉन्ग राइटर बनना चाहते थे।
हाँ, और उन्होंने लिखने से पहले कुछ बहुत अलग तरह के काम भी किए। स्कॉटलैंड में ग्राउस बीटर का काम किया।
ग्राउस बीटर, वो क्या होता है?
शिकार में पक्षियों को हांकने वाला। और लंदन में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए सोशल वर्कर के तौर पर भी काम किया। शायद इन अनुभवों ने उन्हें इंसानी कमजोरियों और जिजीविषा को करीब से देखने का मौका दिया होगा।
हाँ, हो सकता है। और उनकी किताबों पर फिल्में भी बनी हैं जो काफी सफल रहीं। 1993 में द रिमेन्स ऑफ द डे पर बनी फिल्म एंथनी हॉपकिंस और एमा थॉम्पसन के साथ, वो तो उपन्यास जितनी ही क्लासिक मानी जाती है।
हाँ, वो बेहतरीन फिल्म थी।
फिर 2010 में नेवर लेट मी गो पर बनी फिल्म भी, कैरी मुलिगन, एंड्रू गारफील्ड, कीरा नाइटली के साथ, वो भी काफी दमदार थी।
सही है, ये फिल्में भी उनकी कहानियों की ताकत दिखाती हैं। अंत में अगर सोचें तो इशिगुरो का काम हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को कैसे याद करते हैं, कैसे उसे बयान करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी खुद को और दूसरों को सुनाते हैं, है ना? लेकिन वो कहानी कितनी सच्ची होती है और कितनी हमारी जरूरत के हिसाब से घड़ी हुई होती है।
ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी पुराना नहीं होगा,
खासकर आज की दुनिया में जहां सच के कई संस्करण हैं, जहां ऑनलाइन हम अपनी पहचान बनाते बिगाड़ते हैं, और जहां पुरानी बातों को मिटाना मुश्किल है और नई जानकारियों का अंबार लगा हुआ है। इशिगुरो हमें याद दिलाते हैं कि अपनी यादों पर, अपनी कहानी पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कि यही यादें, चाहे कितनी भी धुंधली या अविश्वसनीय क्यों ना हो, हमें इंसान बनाती हैं। शायद खुद को और अपने इतिहास को समझने की कुंजी इसी कश्मकश में छुपी है, इस पर सोचना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।